मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता सीए ब्रह्मा कुमार ललित भाई और ब्रह्मा कुमार सौरभ भाई, ब्रह्मा कुमारी फाल्गुनी बहन कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही ब्रह्मा कुमारी की मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन माननीय ब्रह्मा कुमार करुणा भाई भी हम सब बीच में हैं। स्वागत के लिए खास योगरतन भाई, जो कि हम सबके बीच विशेष उपस्थित है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय गायक है। छत्तीसगढ़ वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आई टी इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और कई चैनल्स पर आपके गीत प्रसारित होते रहे हैं और कई विशिष्ट संस्थाओं से आपको विशेष अपनी गायकी के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ, आकर वे स्वागत गीत हम सबके आगे रखेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ब्रह्मा कुमारी इशिता बहन और उज्ज्वला बहन से निवेदन करती हूँ कि वे आकर हमारे माननीय मंचस्थ अतिथियों का पुष्पों और बैजेस से स्वागत भी करें।
शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आप जो आए तो खिल उठे हैं चमन, महका ये आंगन। शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ये धरा गगन ये पवन चमन सभी करते सत्कार है, आप युवाओं को भी ईश्वर भी बेहद करते प्यार है। इस प्यार का है सांस करो तो सुख पाओगे परम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम। सदा सफलता तुम्हारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वरदान आप सभी को ईश्वर का उपहार है। अब इसका तुम स्वामान रखो तो सफलता है हर कदम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज दहशत का मंजर है, नफरत का खंजर है, चिंता की चिताओं पे उदासी का समंदर है। अब है गमों का दौर बदलना, खुशियाँ हो हरदम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। अब गूंजेगा, अब गूंजेगा युवाओं से दुनिया में शांति का नारा। भारत संग स्वर्णिम बनेगा फिर से ये विश्व सारा। इतिहास लिखेगा स्वर्णाक्षरों में आपके रहमो करम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आप जो आए तो खिल उठे हैं चमन, महका ये आंगन शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
थैंक यू भ्राता युगरतन भाई जी। और स्वागत की श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दृष्टि, मौली और दिशा जो कि अहमदाबाद से आई हुई हैं। आप अपनी भावनाओं को नृत्य के द्वारा हम सबके बीच रखेंगी। आरती ले भारती।
आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभकामना व प्यार से, स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम 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 स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए शब्दों से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय संयोजिका ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन को, जो कि आज के हमारे इस सारे ही कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम से आज पिछले 27 वर्षों से युवा प्रभाग दिन रात युवाओं की सेवा में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। आदरणीय चंद्रिका बहन,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब बहुत खुश हैं। तीन दिन से अपने में खुशियों का स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं और उसकी परम सीमा और चरम सीमा आज इस इन सर्च ऑफ यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस की रिट्रीट में हम महसूस कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर शुभ भावनाएं और संकल्प हमारे साथ हैं तो सब कुछ सहज ही सुलभ हो जाता है। इस रिट्रीट के लिए मेरे दिल में शुरू से था और हमारी अनसुया बहन को, रोहित भाई को मैं कहा करती थी कि आप दिल्ली से किसी वरिष्ठ को ले आए। धन्यवाद उन्हों को भी मैं देती हूं कि आप लोगों के प्रयास से आज हमारे बीच में परम स्नेही परम सम्मानीय हमारे भ्राता राजीव जी गुप्ता हमारे बीच में हैं और आपसे मिलकर के हमने कितना अपनेपन का अनुभव किया है जो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आपका व्यक्तित्व बड़ा शांत, अंतर्मुख, बहुत विनम्र। आप कल रात ही 10 बजे आए हैं। आपसे इस प्रोग्राम से लेट होने कारण जाके मिली और हमने आपसे ही अनुरोध किया कि अगर सुबह 7 बजे आपसे मिलना हो जाए तो इच्छा है। आपने उस बात को मान्य रखी और आज सुबह 7 से 8:30 आपके साथ बैठना हुआ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों से भी आप थोड़े में परिचित हुए और साथ साथ युवा प्रभाग की एक्टिविटी से भी परिचित हुए। लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि जहां बड़े लोग होते हैं, बड़ों के कदमों में बहुत बातें समाई हुई होती हैं। आप यहां आए हैं ये सुनकर के पूरे गुजरात में 85 कॉलेजेस के एनएसएस के प्रोफेसर्स का एक 3 दिन का वर्कशॉप चल रहा है। उन्हों को मालूम चला तो आप श्री को वहां ब्रेकफास्ट के लिए और मिलने के लिए बुलाया था। हमें मालूम चला, हमने कहा हमारा वहां मिलने का हो जाए तो भी बहुत अच्छा। तो आपने उस व्यवस्था को ये कहा कि आप दीदी जी के लिए 15-20 मिनट का टाइम कैसे भी निकालें। और एक इतने अच्छे कार्यक्रम में ईश्वर का संदेश पहुंचाने के निमित्त आप बने हैं। इतनी इनकी सरलता और शालीनता के लिए किन शब्दों में मैं महिमा करूं। आपका सविगत परिचय तो आपको हमारी कृति बहन जी जरूर देंगी, लेकिन आपके मिलने से हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे दिल में युवाओं की आशाओं के लिए, सेवाओं के लिए जो आशाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। हम बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बहुत ही अनुभवी स्किल्ड वक्ता भ्राता ललित भाई, भ्राता सौरव भाई, और हमारी बहन फाल्गुनी, आप सभी का तो अपने हो, यूथ विंग के हो, आपका स्वागत है ही है। लेकिन खास हमने हमारे परम आदरणीय करुणा भाई जी से अनुरोध किया कि ये जो सेशन है ये तो आपका सेशन है और आपके एक्सपर्ट कमेंट सुनने के हम आतुर हैं, तो आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण को मान दे करके भ्राता करुणा जी हमारे बीच में आए हैं। हम आपका भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक सम्मान करते हैं। कार्यक्रम को सुचारू संचालन करने वाली बहन कृति जी और आप सभी हमारे यूथ रिट्रीट में भाग लेने के लिए आए हुए भाई बहनों का फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत आदर भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ और विनती भी करती हूँ। कम नियर, नजदीक आइए, पीछे वाले हमारे सभी भाई बहने नजदीक आ जाइए प्लीज। ओम शांति।
इस सभा के बीच में हम आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है इंटरनेट रिवोल्यूशन एंड यूथ डायनामिज्म। हम सब जानते हैं आज के समय में इंटरनेट ने हम सबको बहुत क्लोज भी लाया है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन का लेना देना भी बहुत सरल और सहज हो गया है। लेकिन जब जब विश्व में कोई नए रेवोल्यूशंस हुए हैं उन रेवोल्यूशन के कुछ चैलेंजेस साथ ही साथ उभर कर बाहर आते हैं। हम सब जानते हैं आज जहां इंटरनेट के प्रादुर्भाव के साथ बहुत सारे कार्य कारोबार सहज हो गए हैं, तब युवावस्था में खास इसके योग्य उपयोग के द्वारा इसका हम महत्तम फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके, इसके लिए एक डायरेक्शन बनाना और गाइडलाइन डेवलप करना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे विश्व में जब सबसे पहले एटॉमिक पावर इन्वेंट किया गया, लोगों ने समझा था अभी बिजली वगैरह बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन उसी एटॉमिक पावर से जब एटम बॉम्ब तैयार हुआ तब वो विश्व के लिए एक डेंजरस चीज बन गई। तो आज का ही हमारा विषय हम सबके पर्सनल लाइफ को टच करने वाला विषय है और इस विषय को ओपन अप करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ भ्राता चार्टर्ड अकाउंटेंट ललिताई जी से। ललिताई पिछले काफी वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। युवावस्था में ही जुड़ने के कारण अपने जीवन को आध्यात्मिक सेवाओं के लिए ही आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ समर्पित किया है। वर्तमान समय आप यहाँ आबू हेडक्वार्टर्स में रह करके पूरी इंडिया के जो ब्रह्मा कुमारीज की अकाउंटिंग सिस्टम है उसको हमारे आदरणीय रमेश भाई जी के साथ साथ लुक आफ्टर कर रहे हैं। आपके विविध क्षेत्र के शौक रहे हैं जिसके तहत स्वर्णिम प्रभात एक यूथ का जो सर्वे किया गया था उसके आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं। युवा बनी शांतिदूत किताब पब्लिश करने में आपकी बहुत बड़ी सहभागिता रही है और 2010 में आपने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट डिजाइन किया था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में बिलियन मिनट्स गुड विशेस बैंक, जिसके तहत मोर देन 250 करोड़ मिनट्स ऑफ गुड विशेस कलेक्ट किए गए थे। इसके अलावा हेल्थ की भी आपको काफी अच्छी केयर है, काफी लोगों को आप अपनी स्वर्णिम आहार पद्धति पर भी गाइडलाइंस देते हैं। मैं आदरणीय ललित भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आज के विषय को आप ओपन अप करें।
रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी राजीव गुप्ता जी, परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, परम स्नेही करुणा भाई जी, सौरभ भाई जी, आदरणीय कृति बहन जी, फाल्गुनी बहन जी एवं इस हार्मनी हॉल में उपस्थित आप सभी प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन का जो सब्जेक्ट इंटरनेट रिवॉल्यूशन एंड यूथ डायनामिज्म, वो हम सब से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ विषय है। पिछली सदी का एक महानतम आविष्कार कहें तो ये इंटरनेट है। जिस प्रकार से बिजली का आविष्कार हुआ और बिजली का उपयोग बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि हम बिजली के बगैर की दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि बिजली के बगैर की दुनिया कैसी होगी, ठीक उसी प्रकार जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ और उसके बाद इसका उपयोग बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है, ये देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले 10 वर्षों में ही यह इतना इसका उपयोग बढ़ जाएगा कि इसके बगैर की दुनिया कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इंटरनेट के बगैर ये दुनिया चल भी सकती है। आप सब यहां ट्रेन से पहुंचे हैं, भारत में दुनिया की प्रथम चार जो रेलवे व्यवस्थाएं हैं सबसे बड़ी उसमें से भारत में एक है, तो आप हजारों स्टेशन में से किसी भी स्टेशन पर जाके, किसी भी स्टेशन से जाकर कहीं भी जाने वाली रेलगाड़ी का बुकिंग अपनी ऑफिस या घर में बैठे हुए या अपने मोबाइल से आप वो बुकिंग कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, अपना सीट रिजर्वेशन चेंज कर सकते हैं। ये सब ये इंटरनेट की कमाल है। यहां बैठे हुए आप लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ये कर सकते हैं। ये इंटरनेट की कमाल है। टेली मेडिसिन, एक अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर आबू के अस्पताल में ऑपरेशन कर सकता है, ये इंटरनेट की कमाल है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जहां पर इंटरनेट ने महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया हो। इतना इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। और चूंकि यहां बैठे हुए जो हमारे भाई बहने हैं वो 25 से 40 साल के प्रोफेशनल्स को हमने विशेष इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में, तो आपने आपके जमाने में ही ये इंटरनेट आया है और विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है, तो आपने तो इसका बहुत बहुत उपयोग किया है, कर रहे हैं और आगे भी होता ही रहेगा। तो इतना अधिक उपयोग इसका है ये हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके भय स्थान भी हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो भय स्थान है वो है डिपेंडेंसी। इंटरनेट के कारण हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, माना आपका बैंक में जमा पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया, आप बैंक में गए और बैंक वाले को कहा कि मुझे 1000 रुपया कैश विड्रॉ करना है, पर अगर सर्वर कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कैशियर वो मैनेजर सब जान रहे हैं कि आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बैंक में, पर आप 1000 रुपया भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर कनेक्टिविटी नहीं है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में जितनी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती जा रही है उतना ही एक रिस्क वो भी बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण से बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब टोटल रेल सिस्टम इंटरनेट के द्वारा स्वचालित हो जाएगा और उस समय खुदा न खास्ता कहीं कुछ कमांड में गड़बड़ हुई या कुछ वायरस आ गया, जो ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन से उनकी क्या हालत होगी। तो डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी रिस्क भी पैदा कर रही है। दूसरा, इंटरनेट के साथ हम कारोबार करते हुए, मशीनों के साथ कारोबार करते हुए हमारा जीवन मशीनी बनता जा रहा है। हम मशीन की तरह ही काम करने लग गए हैं। जो हमारा असली अस्तित्व है, जो मानवीय गुण है, जो मानवीय वैल्यूज और पावर्स हैं, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, न अनुभव करा पा रहे हैं। जीवन एक मशीन बन गया है। मेरे एक मित्र से मैंने पूछा कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, तो बड़े शायराना अंदाज में जवाब दिया कि बस यार, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, बस चल रहा है, जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं, पर जा रहे हैं, और जब लास्ट में देखते हैं तो हम वहीं के वहीं हैं। ये हाल हो गया है। आज हजारों लाखों माइल दूर बैठने वाला अपरिचित व्यक्ति भी सोशल मीडिया के कारण अपना बन गया है, नजदीक आ गया है, दिलों के नजदीक आ गया है, और हमारी पास वाली सीट पर बैठे हुए हमारे माता पिता, हमारे मित्र संबंधी, वो हमारे से बहुत दूर चले गए। ये भी एक इंटरनेट की ही एक रिजल्ट है। अब हमें केवल ये देखने की जरूरत है कि इंटरनेट एक साधन है, और उस साधन को, बहुत पावरफुल साधन है, जैसे पैसा एक साधन है, बहुत पावरफुल साधन है, रिलेशन वो भी एक बहुत पावरफुल मीडिया काम करता है, उसी प्रकार से इंटरनेट एक बहुत पावरफुल साधन है। उस साधन को, वो साधन जो है एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक है, गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो अगर हम मास्टर बनकर उसकी सेवा लेते हैं, हम मालिक बनकर उसकी सेवा लेते हैं, तो वो सचमुच हमारे लिए बहुत अच्छा साधन है। और अगर वो मालिक बन गया हमारा, तो फिर हम कहां होंगे वो हमको भी पता नहीं है। ये रास्ता इतना स्लिपरी है, फिसलने वाला है, कि अगर हमने अपने ब्रेक्स मजबूत नहीं किए, स्ट्रांग ब्रेक नहीं रहे हमारे, तो हम किसी भी घड़ी फिसल सकते हैं, और उस फिसलने के बाद हमारे जीवन किस मोड़ पर खड़ा होगा वो भी हमको पता नहीं होता है। मैं आपको अपने खुद का अनुभव बताऊं तो, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए काफी वर्षों पहले से ही इंटरनेट का यूज करना शुरू कर दिया था, और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स लिए थे, लिए ले भी रहा हूं। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल, स्काइप आदि आदि सोशल मीडिया का चलन बढ़ता गया, तो मैंने भी उनको ज्वाइन किया, उसका प्रयोग शुरू किया, लेकिन समय इतना नहीं रहता था कि ज्यादा प्रयोग कर सकूं। लेकिन जब व्हाट्सएप का प्रयोग शुरू किया, तो वो एक इतना इजी टूल है यूज करने के लिए कि उसका प्रयोग थोड़ा बढ़ता गया। हालांकि स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और स्पिरिचुअल लाइफ होने के कारण ज्यादातर सकारात्मक चीजें ही शेयरिंग होती थी, लेकिन मैंने देखा कि ज्ञान इतना है दुनिया में कि हम सारी जिंदगी केवल ज्ञान को पढ़ने में लगा दें तो भी मुश्किल से 1-2% ज्ञान हम संपर्क में आ पाएंगे, इतना ज्ञान दुनिया में फैला हुआ है। फिर मैंने सोचा कि इतना ज्ञान दुनिया में है लेकिन इस जीवन में कितना आया। शांत रहने पर, कि हमको शांत रहना है, कोई भी क्रोध की बात उत्पन्न होती है तो हमें शांत रहना है, इस पर आपको बहुत पीपीटीज मिल जाएंगी बहुत से कोटेशंस मिल जाएंगे, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से फोटो मिल जाएंगे, शेयरिंग करते हैं आपस में हम सब, बहुत से मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे शब्द मिल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो मैं शांत रह पाता हूं? मैंने अपने आप से पूछा। और लास्टली मैंने यही डिसीजन लिया कि ज्ञान बहुत है लेकिन इस ज्ञान को मुझे अपने जीवन में पचाना है, तो मैं इंटरनेट का उतना ही यूज करूंगा जितना मेरे लिए बहुत असेंशियल है, उसके अलावा मैं इंटरनेट का यूज नहीं करूंगा। लेकिन जो ज्ञान मिला है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाके उसको शेयर करूंगा, अपनी लाइफ के द्वारा शेयर करूंगा। और उसके बाद मैंने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सारा ही बंद कर दिया और मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। और नहीं करने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि जो सूचनाएं मेरे लिए जरूरी है वो मेरे तक पहुंच रही है, क्योंकि मेरा ईमेल एड्रेस है सभी के पास जो मेरे से संबंधित है और वो मुझे सूचित कर देते हैं जो जरूरी बातें हैं। फोन है, फोन से बातें हो जाती है जो जरूरी है, जितनी जरूरी चीज है वो हमारे तक पहुंच जाती है। बाकी ये देखा कि उनके फ्री यूज से बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें हमारे पास पहुंचती है और उसके कारण हमारे संकल्प, हमारे समय, हमारी शक्ति, हमारा धन व्यर्थ हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे युवा भाई बहनों का साथ भी अधिकतर यही हाल है। वो फेसबुक में होंगे, वो व्हाट्सएप यूज करते होंगे, लेकिन उनके जो यूज का है उसका 90% जो है ज्यादा वो व्यर्थ या नेगेटिव वाला है, जो उनको यूज नहीं करना है और वो टाइम ले रहा है। कैसे बचा जाए? साधन बहुत अच्छा है, प्रयोग किए करने के बगैर हम रह भी नहीं सकेंगे, भय स्थान भी है, तो कैसे बचा जाए? आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये आपका परम सौभाग्य समझिए कि आप ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां से आपको वो ब्रेक लगाने की मेथड और शक्ति दोनों ही यहां से मिलेगा राजयोग के द्वारा। आप जब राजयोग, जो सवेरे 6:30 के सेशन आप दो दिन से अटेंड कर रहे हैं और यहां से जाने के बाद भी अपने अपने स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर आप प्रयोग करेंगे, उसके द्वारा आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे कि आज तो इंटरनेट है लेकिन इसके आगे भी और आगे आविष्कार होना है, और वो वाइब्रेशन के द्वारा कम्युनिकेशन होगा। उस वाइब्रेशन के कम्युनिकेशन में साइलेंस पावर की जरूरत होती है, वो आप इस राजयोग से सीख सकते हैं। बिना किसी माध्यम के आप यहां बैठे बैठे किसी के लिए संकल्प करेंगे और वो उसको महसूस होगा, वहां उसको फील होगा और वो उसके अनुरूप कार्य करेगा। वो वाइब्रेशन पावर, वो साइलेंस पावर आप यहां से सीख के जा सकते हैं। और जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं यूज करना है, वो पावर भी आप यहां से सीख के जा सकते हैं। तो इस राजयोग के द्वारा मैं दिव्य शक्ति आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, उसका अनुभव आप जब एक बार कर लेंगे तो वह ब्रेक लगाने की शक्ति भी आप में आ जाएगी और जिस चीज को आपने छोड़ने का संकल्प किया हुआ है वो आप छोड़ सकेंगे। ये मेरा विश्वास है और यही मेरी शुभकामना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। ओम शांति।
थैंक यू ब्राता ललित जी, आपने शिष्य को बहुत अच्छी तरह ओपन अप किया है कि जहां एक तरफ चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वहां चैलेंजेस को फेस करने के लिए इतना ही सक्षम होकर के हमें फील्ड में आना होगा। आज हम सबके बीच एक ऐसी विभूति उपस्थित है जिनका कार्यकाल और कार्य क्षेत्र ही युवाओं के बीच रहा है। मैं इस मौके पर बड़े गौरव और खुशी के साथ माननीय भ्राता राजीव गुप्ता जी को इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं, जिन्होंने 1979 में उत्तरांचल से आईएएस के रूप में अपनी कैरियर शुरू की। एक कलेक्टर के रूप से अपनी करियर को शुरू करके विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी, कमिश्नर, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि के रूप में सेवाएं देते हुए 2013 से सेंट्रल गवर्नमेंट के यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में माननीय सेक्रेटरी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिनिस्ट्री के अंतर्गत हजारों यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एनएसएस, एनवाईकेएस आदि बहुत नेशनल लेवल पर और नेटवर्क के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़ा हुआ ये एक बहुत बहुत बृहद नेटवर्किंग वाला डिपार्टमेंट है। और मैं ये बात विशेष तौर से कहना चाहूंगी कि कल शाम से ही कुछ क्षण आपके साथ बिताने का जो मौका मिला, मैंने आप में विशेषता देखी कि कल बहुत सारे कार्यक्रम करके हमारे पास आए हैं, रात्रि को भी अथक होकर हम सबसे मिले। आज सुबह से भी कई कार्यक्रम रात तक आपके हैं। मैक्सिमम कार्यक्रमों को जस्टिफाई करना, मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को खुश करना और कोई भी प्रोग्राम में बड़ा फ्लेक्सिबल होकर के प्रोग्राम को चेंज करके एडजस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता मैंने आप में देखी है माननीय भ्राता राजीव जी।
आदरणीय ब्रह्म कुमारी चंद्रिका बहन जी, आदरणीय ब्रह्म कुमार करुणा भाई जी, ललित भाई जी, फाल्गुनी बहन जी, सौरभ भाई जी, कृति बहन जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे युवा साथी तथा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज मुझे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर आने का अवसर मिला है और वह भी एक ऐसे कार्यक्रम में जो युवाओं के विकास से जुड़ा हुआ है, यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस, युवा सफलता की खोज में। सफलता सभी चाहते हैं और इसमें एक बड़ा सामूहिक विषय आज रखा गया है जिस पर हम लोग इस समय विचार कर रहे हैं, इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड यूथ डायनेमिज्म। वास्तव में इंटरनेट रेवोल्यूशन हो चुका है और रेवोल्यूशन तो क्या कहें, बताइए, इतना तेजी से उसका विकास हो रहा है कि जो उपकरण है हर 5 साल में ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए उपकरणों की जरूरत पड़ती है, नए नए तरह, पुराने पेन ड्राइव्स बेकार हो जाते हैं, पुराने कंप्यूटर्स बेकार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इसके द्वारा सूचना तंत्र का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग हुई है, जैसे नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट हुआ। तो हमें याद है जब हम पढ़ते थे शुरू में कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर में उस समय एक दूरदर्शन ने सीरियल चलाया था मौसी और पीसी। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो छोटा डेस्कटॉप था, और मौसी, वो काफी लंबा सीरियल चला। तो उसमें अंत में यह हुआ कि मौसी और पीसी की दोस्ती हो गई और एक दिन पीसी ने मौसी के बर्थडे पर खुश होकर मौसी के लिए उपहार स्वरूप एक फ्रिज मंगाया। तो अभी मैं सोचता हूँ इस स्तर तक तो कंप्यूटर नहीं पहुंचा है कि अपने आप ऑर्डर कर सके, लेकिन धीरे धीरे उसका इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जो यूजर्स हैं, यूजर्स कौन है, हम लोग हैं। जैसा बताया अभी ललित भाई ने कि हम उसके स्वामी हैं, वह हमारा सेवक है, हमारा साधन है, साध्य नहीं है। तो जब तक उसको हम उसी रूप में देखेंगे, उस रूप में प्रयोग करेंगे, तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है। लेकिन जब वह हम पर हावी हो जाएगा, जब वह हमारे मास्टर के रूप में काम करने लगेगा, हमारे एक व्यसन बन जाएगा, तब वह हमें नुकसानदेह हो जाएगा। और जैसा होता है कि जो चीज जितनी तीक्ष्ण प्रभावी होती है उसका प्रभाव उतना ही अच्छा और उतना ही खराब हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। उसी तरह से आज जो सामान्य रूप से देखने में आ रहा है कि इंटरनेट का दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर कुछ ज्यादा पड़ रहा है और उसका फायदा कुछ कम उठा रहे हैं। मैं पहले अपनी सरकारी बात कह दूं, सरकार के ओर से हम सभी संकल्प हैं, हमारा विभाग भी चाहता है, पूरा भारत सरकार राज्य सरकारें चाहती हैं कि अधिक से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग हो, अधिक से अधिक समाज से कनेक्ट करने के लिए, यूथ से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग हो, इंटरनेट का उपयोग हो, यूथ से इसका उपयोग करें, अधिक से जानकारी करें। लेकिन आज यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि हमारी युवा पीढ़ी इसका उतना लाभ नहीं ले पा रही है और काफी युवा इससे काफी नुकसान भी उठा रहे हैं। मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो ललित भाई कह चुके हैं उसकी। कुछ अब जैसे उदाहरण के लिए चैटिंग होती है, अब इंटरनेट पे चैटिंग होती है, चैटिंग से दोस्त बन जाते हैं। अब वही जैसे आपने बताया कि आप जानते नहीं है दूसरा आदमी कैसा है, लेकिन आपका इंटरनेट पे दोस्त बन गया, फिर धीरे धीरे लोग मिलने लगते हैं बिना किसी को परखे समझे। इस तरह से दोस्त बनाना बहुत व्यवहारिक नहीं है। फिर अब यह पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कह लीजिए कि अब कुछ जो हमारी सामाजिक मूल्य थे उनसे भी गिरावट आ रही है। जैसे अब काफी युवा पीढ़ी बड़े शहरों में खासतौर से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है। अब वह कितना बड़ा कुठाराघात है हमारी संस्कृति पर। मैं हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा उसका कानूनी पहलू क्या है, उचित है अनुचित है, लेकिन अवश्य हमारी संस्कृति से भिन्न है। बात सही है कि इंटरनेट से यूथ डायनेमिज्म आई है। डायनेमिज्म का मतलब क्या होता है कि हम जड़ता को छोड़ें और एक तरह से हम जागरूक बने, हमारी जानकारी बढ़े, हमारा संपर्क बढ़े, लेकिन इसका मतलब नहीं हम अपनी जड़ों को छोड़ दें। जड़ता छोड़ने के लिए नहीं, हम जड़ों को छोड़ दें। तो वी हैव नॉट टू लीव आर रूट्स, वी हैव टू बी रूटेड इन आर वैल्यूज, इन आर ट्रेडिशन, इन आर कल्चर। नाउ दैट डायनेमिज्म शुड नॉट स्वीप अस अवे फ्रॉम आर रूट्स, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सही उद्देश्य को पकड़ना, सही एक ऊंचे जिंदगी में जब हम लक्ष्य को लेकर काम करते हैं, जब हम उस चाहे वह अपने देश का विकास है, अपने समाज का विकास है, अपने कैरियर का भी विकास कुछ हद तक उसमें आ जाता है, तब हम जो है व्यसनों से बच जाते हैं। सही बात है, अगर मान लीजिए हमें अपने भाई बहनों को पढ़ाना है, विकास करना है, तो हम जरूरी बात है हम पैसा इधर उधर फालतू खर्च नहीं करेंगे। जैसे हम पैसा फालतू खर्च नहीं करेंगे, हम समय भी फालतू खर्च नहीं करेंगे। अगर इंटरनेट हमारे समय का दुरुपयोग करता है तो वह हमारा व्यसन हो गया ना। जैसे हम पैसा शराब पर खर्च नहीं करेंगे, वैसे ही हम इंटरनेट पर कोई ऐसी कोई अश्लील सामग्री या कोई हल्का साहित्य पढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसका सही उपयोग करेंगे। और ये भी मैं साथ साथ कह दूं, उपयोग जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम उसका उपयोग नहीं जानेंगे, अगर हम ईमेल वगैरह के संपर्क में नहीं रहेंगे, तो हम आज के जो एक प्रगतिशील युग है, जो प्रगतिशील नागरिक है, उसकी परिभाषा में नहीं आएंगे, हम पिछड़ जाएंगे सामाजिक जीवन में भी। और मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक जीवन में भी इसकी बहुत उपयोगिता है। मैं लगभग पिछले कुछ महीनों से, जब से मेरा ब्रह्म कुमारी से संपर्क हुआ है, मेरे पास इंस्पिरेशनल ईमेल्स आते हैं, प्रतिदिन मैं पढ़ता हूं उसको, बहुत अच्छा लगता है, बहुत उससे ज्ञानवर्धन होता है, बहुत उससे उत्साहवर्धन होता है, एक सही दिशा मिलती है। तो जब आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अब ये जैसे पहली बात थी, पहले भी कहा गया था अभी आप जो है अच्छा लिटरेचर पढ़िए, तो इंटरनेट पे भी अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छा सोचिए। तो जैसा आप हर एक चीज के साथ है, जैसा आप भोजन खाते हैं, जैसा आप ये भी एक मानसिक भोजन है जो भी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, वैसा ही आपका शरीर बनेगा, वैसे ही आपका मानसिक स्वास्थ्य बनेगा, वैसे ही आपके जीवन की गतिविधियां बनेंगी। तो ये वास्तव में अपने हाथ में है। और मैं समझता हूं कि इस संस्था में आकर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन को कैसे बनाया जाए, जीवन की दिशा कैसे निर्धारित की जाए, लेकिन इतना जरूर है कि हमें इंटरनेट का सही उपयोग करना है। और वास्तव में इसके उपयोग से, बल्कि मैं बता दूं आपको कि अब तो हम शासकीय रूप से भी हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, हमारे मंत्रालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालय सोशल मीडिया पर हैं। हमारे प्रयास रहता है कि कोई भी हमारे यहाँ उल्लेखनीय घटनाएं हों तो फौरन वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाएं। हमारा यह भी प्रयास रहता है कि जो भी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, उनका यथा शीघ्र जो है यथा उनका समाधान किया जाए, उनका उत्तर दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार बड़े हल्के कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत अच्छी भाषा में लिखे होते हैं, तो वह हमारे दर्शकों की मानसिकता को परिलक्षित करता है। तो जब समाज के नागरिक प्रबुद्ध होंगे तो समाज का पूरा भविष्य ही सुनहरा होगा, सुनिश्चित होगा, यह हम सबको सुनिश्चित करना है। अब मैं आता हूं कि वास्तव में कि अब लगता है कि हमने जैसे कैलकुलेटर जब आया हमारे देश में, हम जब छात्र थे हम कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करते थे, तब हम सुनते थे सब और देशों में, इंग्लैंड में और खासतौर से अमेरिका वगैरह में स्टूडेंट्स कैलकुलेटर एग्जाम में ले जाते हैं, वो कैलकुलेशंस करते हैं उससे। तो वहां पे अगर ये होता कि अगर उनसे पूछा भाई 2+5 कितना होता है, तो वो कैलकुलेटर पे जोड़ के बताएगा, वो एकदम नहीं बता सकता। तो जब उसने कैलकुलेटर का उपयोग करना शुरू किया तो उसकी मानसिक शक्ति उस विषय में क्षीण हो गई। इसी प्रकार से अगर हम ज्यादा गाड़ी से चलेंगे तो अपने पैदल चलने की क्षमता को कम कर लेंगे, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पूरा शरीर स्वस्थ होता है। इसी प्रकार से जो काम आप मानसिक शक्ति के द्वारा कर सकते हैं वह अवश्य कीजिए, उससे आपकी मानसिक शक्ति तीक्ष्ण होगी, बढ़ेगी, बजाय इसके कि आप एक, ये सही है कि इंटरनेट और ये कैलकुलेटर कंप्यूटर बहुत उपयोगी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन उससे कीजिए, लेकिन जबानी भी कुछ कीजिए। जबानी आज भी हमें याद है, जब हमने पहाड़े पढ़े थे अपने स्कूल में, आपको भी शायद याद होंगे, यंग जनरेशन तो आजकल पहाड़े नहीं याद रखती, याद भी नहीं होंगे आपको। इसी प्रकार से आपकी हम बता दें टेलीफोन नंबर्स के लिए भी, टेलीफोन डायरी भी शुरू में आई थी जब हम, मैं समझता हूं कि बीए वगैरह पढ़ते थे तब ये आई थी, डिजिटल डायरीज वगैरह आई थी, काफी हेविली प्राइस थी उस समय, तो लोग लेते थे, अरे भाई इसमें तो जो है 2000 नंबर स्टोर हो जाते हैं, इसमें 1500 नंबर स्टोर हो जाते हैं। और जब वो डायरीज नहीं थी तो सैकड़ों नंबर हम लोग जबानी याद रख लिया करते थे। मुझे याद है कि जब मुझे अब भी ऐसे कुछ नंबर याद होंगे जो हमारे सहपाठियों के थे, लेकिन अब आप जो है क्योंकि हम मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं या डायरी में स्टोर कर लेते हैं तो अभी नंबर याद नहीं रहते। तो इस तरह से हमने अपनी एक मेंटल फैकल्टी को वीक किया। तो इसी प्रकार से ये देखें कि हमारी मेंटल फैकल्टीज, जैसे हम वॉक के द्वारा अपने आप को फिट रखते हैं, हम मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा अपने मस्तिष्क को फिट रखें। फिर आता है कि अपनी भावनात्मक एक्सरसाइज द्वारा, मतलब भावनाओं के सही प्रयोग द्वारा अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक रखें, यह भी बहुत आवश्यक है। और ये बता दें आपको कि ये शक्तियां मानसिक शक्तियों के आगे बहुत गौण हैं। आप सब जानते होंगे उदाहरण, जो हमारी एक मैथमेटिशियन थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, जो कंप्यूटर से भी तेज जो है कैलकुलेशंस कर लेती थी, अभी तक भी ऐसा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स को भी उन्होंने हरा दिया था। आप नाम याद होगा ललित भाई आपको उनका, शकुंतला देवी जी, हाँ मेरे ख्याल से भी पिछले साल ही शायद उनका देहांत हुआ। तो मानसिक शक्तियों के आगे ये शक्तियां बहुत कम है। और एक बात और कि अब थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक तरफ आए तो देखें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है, वास्तव में जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। हम कहां से आए हैं, हमारा क्या सोर उद्गम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम केवल 80-100 साल के लिए जीने आए हैं, या हमारा इससे भी पहले अस्तित्व था, इसके आगे भी अस्तित्व रहेगा। इस सब के लिए जो है आपके काम इंटरनेट वगैरह नहीं आने वाला है, ये आपको नेटवर्किंग तो करा सकता है, आपको जानकारी दे सकता है किस विषय में, किस देश में, किस महापुरुष ने या किस स्कॉलर ने क्या कहा क्या लिखा, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। अंदर जाना होगा ध्यान के द्वारा, अंदर जाना होगा साधना के द्वारा, मन को एकाग्र करके। तो जो फिर यहीं पर बात आ जाती है कि हमारे जो योग साधनाएं हैं, और योग साधनाओं के द्वारा ये विश्वास से हमारे योगी कहते थे कि मैं सब कुछ जानता हूं, जैसे गॉड ओमनीपोटेंट ओमनीसाइंट ओमनीप्रेजेंट है, ऐसे ही हम भी उसी का अंश हैं, तो वह क्यों नहीं बन सकते। अब वह हम बन सकते हैं, उसके लिए ये तो खिलौने मात्र हैं। अगर आप सोचें कि जैसे और अपनी फैकल्टीज को वीक ना करें, अपनी फैकल्टीज को बढ़ाएं, तो अवश्य हम अपने कंसंट्रेशन के द्वारा और अपने मानसिक शक्तियों को एकाग्र करके हम बहुत उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ सकती है, बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं। अब वास्तव में अब जैसे ललित भाई ने कहा कि भाई हम कितना भी पढ़ ले, मैंने पढ़ना ही छोड़, कितना भी पढ़ ले मैं कितना परसेंट ज्ञान कर लूंगा, 1-2%, मैं कहूँ 1-2% भी नहीं, हो सकता है कि 0.01% भी ना हो, कितना ज्ञान है कितना क्या है, अब क्या विस्तार है इस ब्रह्मांड का। एक ब्रह्मांड का विस्तार इतना है कि जहां पे लाइट को हमसे पहुंचने में जहां पे करोड़ वर्ष लग जाते हैं यहां तक आने में, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, ऐसे कितने बड़े ब्रह्मांड हैं, हम किस किस का ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब साइंस ने भी क्या प्रगति ही क्या की है, साइंस ने ज्यादा ज्यादा एक आदमी को चंद्रमा पे चला दिया है, एक मार्स पे गाड़ी चला दी है, थोड़ा बहुत जानकारी कर ली है, लेकिन इससे और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी जगह जीवन होगा, कितनी जगह क्या होगा। तो इस जीवन का जो उद्गम है अगर हम उसको नहीं जानने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में जो फैकल्टीज हमें प्रभु ने दी हैं हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको पूरा उपयोग करने के लिए हमें कहीं आगे बढ़ना होगा, और वह आगे बढ़ने का साधन वही है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि डू इट बाई, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई वर्क वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी बाई वन और मोर और ऑल ऑफ दीज एंड बी फ्री, दिस इज द होल रिलीजन, डॉक्ट्रिन्स और डॉगमास रिचुअल्स और बुक्स और टेम्पल्स और फॉर्म्स आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। कि आपके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान निहित है, कि उसको जागृत करने की आवश्यकता है। आज साइंस भी कहती है कि न्यूरॉन्स जितने आदमी के ब्रेन में है उनका बहुत कम 1% से भी कम हम उपयोग करते हैं, और जो जिसके थोड़े ज्यादा डेवलप हो जाते हैं वो आइंस्टीन और उससे भी जितना ज्यादा जो है वह बुद्धिमान और उतना कुशाग्र हो जाता है। लेकिन अगर हमारे संत योगी जो थे, हमारे योगियों के, तो सभी न्यूरॉन्स जागृत होंगे, तभी वो जो है सर्वद्रष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ उनके सामने, पूरा ब्रह्मांड उनके जैसे हाथ में बेर रखा हो, हस्त आमलकवत उनके रहता था, तो उस स्थिति की ओर बढ़े तभी हमारा जीवन वास्तव में एक तरह से धन्य होगा। और इस सब में आप सभी साधनों का सहारा लें, समाज सेवा करें, समाज से जुड़ें, लेकिन एक मास्टर बनके ना कि एक सेवक बनके, एक उपयोगकर्ता बनके ना कि एक व्यसनी बनके, और एक जैसे कहना चाहिए कि जान लें कि उसकी तुच्छता क्या है, उसकी नश्वरता क्या है, और आपके अपने उद्देश्य की महानता क्या है, और आपको उससे कहीं आगे जाना, कहीं आगे बढ़ना है। तो इस आज के इस सभागार में मैं समझता हूं कि मुझे आपने आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का अवसर दिया, मुझे बहुत प्रेरणा मिली यहां से, और आपके जो सेवा कार्य हैं अवश्य बहुत विलक्षण हैं, उसमें जो भी सरकार का योगदान होगा हमारे विभाग का हम अवश्य कराएंगे, अन्य विभागों से बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि आपकी परिकल्पना है कि एक रेल यात्रा रखी जाए ताकि उससे युवा शक्ति को जागृति हो, शांति दूत उसको यात्रा कहा जाए, इन सब में योगदान किया जाए, तो हमें आज शांति की आवश्यकता है, हमें हारमोनी की आवश्यकता है उससे ज्यादा। और अगर इंटरनेट हमारी शांति को डिस्टर्ब करता है, हमारी हारमोनी को डिस्टर्ब करता है, हमारी मेंटल फैकल्टीज को डिस्टर्ब करता है, तो उसका हम केवल एक लिमिटेड उपयोग करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज सभी युवा साथियों को मैं चाहूंगा कि वो देश के विकास में योगदान करें। हमारी विभाग की जो योजनाएं हैं आप सब जानते होंगे, एक राष्ट्रीय सेवा योजना है जिसे नेशनल सर्विस स्कीम कहते हैं, दूसरी नेहरू युवा केंद्र संगठन है जिसके तहत यूथ क्लब सुनाए हैं हमारे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी हैं। तो ऐसे आप संगठन बनाए, उन संगठन के माध्यम से आप कम्युनिटी वर्क करें, आप समाज सेवा करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान करें, अशिक्षितों को पढ़ाएं, ई लिटरेसी दें, जो कंप्यूटर नहीं जानते कंप्यूटर चलाना सिखाएं, इंटरनेट चलाना सिखाएं, और साथ साथ अपने जीवन को भी समृद्ध करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता राजीव जी। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के पास 1,00,000 से अधिक ऐसे युवा हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जो निर्व्यसनी हैं, और अपने प्रोफेशनल जीवन के साथ साथ वो आध्यात्मिक रूप से युवाओं की सेवाओं के लिए रात दिन एक होकर के, एकजुट होकर के, और युवा प्रभाग के मंच से कार्यरत रहे हैं और रहते आए हैं। विशेष रूप से मैं आपका धन्यवाद फिर से इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने आज के विषय को बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देकर के हम सबको सुनाया है। सरकार के यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का पिछले 15 वर्षों से हमें बराबर सहयोग और सहभागिता मिलती आई है। ये ब्रह्मा कुमारी इसके युवा प्रभाग के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज हम सबके बीच माननीय राजीव जी ने फिर एक बार हमें प्रोत्साहित किया है कि आगे और भी देश भर में युवाओं के सशक्तिकरण के लिए फिर से एक बार और सरकार का यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक्स अ लॉट माननीय राजीव जी। साथ साथ ही अब मैं एक और महानुभाव को आपके सामने आमंत्रित कर रही हूं, आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी। बहुत छोटी आयु से बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और ऐसे ही युवा काल से वे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स में अपनी विभिन्न विभागों में सेवाएं देते रहे हैं। वर्तमान समय आप मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, पब्लिक रिलेशंस चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर फॉर ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में हैं, मैनेजर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन हैं, वाइस पर्सन ऑफ मीडिया विंग और पिछले कुछ समय से 24 घंटे चलने वाली एक पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल का इनिशिएशन आपने ही किया, रेडियो मधुबन, और इस पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के आप चीफ हैं। इसके अलावा जी सोनी, संस्कार, जागरण, साधना, ईटीवी, आस्था ऐसी अन्य टीवी चैनल्स पर भी अब तक 5000 घंटों से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी लगातार इन कार्यक्रमों की श्रृंखला आपके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में चलती आई है। रिसेंटली ही आपको आर्यभट्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द एक्सलेंस सोशल सर्विस 2014 में दिया गया है। आदरणीय करुणा भाई,
सत्यम शिवम सुंदरम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी विशेष संस्था है, सारे दिन सारे अमृत वेले से यही सोचते हैं कि हम दुनिया को क्या दें। सारी मानव जीवन का जो लक्ष्य है, हम इस दुनिया से क्या ले, परंतु हमारी बहनें यही सोचते हैं कि हम दुनिया को क्या दे। तो इसलिए मैंने एक बार हमारे फाउंडर से पूछा था कि ये जो विज्ञान की जो प्रगति है, तो हम समझते थे जो एटम बॉम्ब्स ये वगैरह बने हैं ये तो सब विनाश के लिए है, तो हमारे लिए क्या काम आएगा। तो पिताश्री जी ने बताया ये जो सारे विज्ञान की जो प्रगति हो रही है बच्चे, ये आपको काम में आएगा। सचमुच आज हम देख रहे हैं जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में है और हम सब की जो एकता आज हुई है तो वो इंटरनेट द्वारा है, क्योंकि जो पहला पहला जो संकल्प हम सब ने रखा है वो है देने का। आप आपके बच्चे के लिए, परिवार के लिए क्या देना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, ये देना है ये नहीं देना है पक्का मालूम है। तो इसी तरह से जो भी प्रगति है साइंस का, उससे हम दूसरों को क्या सुख दे सकते हैं, जब आप ये सोचेंगे तो इन साधनों का मिसयूज हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रात दिन मैं इन सब साधनों का यूज करता हूं, मुझे उन्होंने लिमिटेशंस दे दिया है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, वो लोग रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जैसे फेसबुक में 5000 से ज्यादा मैं मेंबर नहीं बना सकता हूं, दूसरे जुड़ सकते हैं पर मैं फॉल उनको ले नहीं सकता। कारण क्या है, मेरा ये लक्ष्य रहता है कि भाई मुझे कुछ देना है। जैसे आपने बताया तो सुबह सुबह जब शिवानी बहन का मैसेज आता है वो पढ़ लेते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है सारे दिन के लिए। अपने युवा विंग वालों ने एक बहुत अच्छा स्लोगन्स के बनाए थे जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहां आए थे तो उन्होंने उसको अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड पे लगाए थे। तो आप सोचते होंगे कि भाई लोग पढ़े बाहर बोर्ड लगाए हैं गेट से, नहीं, जब भी वो डेली आते हैं ऑफिस में सुबह पहले खुद खड़े होकर वो पढ़ते हैं और इसके बाद अंदर आते हैं तो सारे दिन के लिए एक प्रेरणा लेते हैं। तो जो भी प्रगति हुई है ये थोड़ा सा फास्ट है। जैसे आपने देखा होगा आज समाचार जो है प्रिंट मीडिया में 24 घंटा लेते थे, आज टेलीविजन है तो हम लोगों को कुछ घंटे का अंतर रहता है, नीचे फ्लैश होता है पर उसके बारे में समझने के लिए कुछ समय जाता है। परंतु जो इंटरनेट या सोशल मीडिया जो है कुछ ही सेकंडों में जाता है। इसमें प्रॉब्लम यही है, मैं प्रिंट मीडिया में जब करता था तो कई बार गलती हो जाती थी, जो न्यूज हम दिए हैं वो उसमें कुछ अंतर होता तो हम कहते थे किल, ऐसी न्यूज को वापस उसको बंद करने के लिए किल शब्द यूज करते थे, उससे कम नहीं चलता है। परंतु आज इंटरनेट में यही एक प्रॉब्लम है, हम किल नहीं कर पा रहे हैं, इतना फास्ट है जो स्प्रेड हो जाता है उसको रिवर्स करना, रिवर्ट करना ये बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कोशिश की ये मैसेज किसने भेजा, एक से दूसरे पे तीसरे से उसने भेजा, उसने मुझे भेजा, उसने मुझे भेजा, तो मैंने यही देखा कि थोड़ा सा देखने में इनको अच्छा लगा तो वो पूरा पढ़ा भी नहीं तो उसने आगे भेज दिया। तो हमारे मीडिया में एक वर्ड है एडिटर्स कहते हैं, कोई भी मैसेज जाता है न्यूज जाता है कुछ भी है रेस्पॉन्सिबल है एक आदमी एडिटर, तो हर चीज को एडिट करने के बाद दिया जाता है। पर ये जो इंटरनेट में जो हो रहा है इस समय पर एडिटिंग का मार्जिन नहीं है, इतना फास्ट चला जाता है। तो मैंने एक अपने अंदर प्रैक्टिस पक्का कर दिया, कोई भी मैसेज मैं भेजूंगा पहले मैं पढ़ता हूं और मुझे यह अच्छा लगता है तो मैं आगे भेजूंगा, नहीं तो मैं नहीं। तो जो भी चीज है पहले मेरे लिए वो सही लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और इससे दूसरों के लिए अच्छा लगेगा ये भरोसा मुझे है, और उसकी जवाबदारी भी मुझे लेना पड़ेगा फुल, क्योंकि अभी बहुत लॉ बन चुका है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अभी 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 मैंने पढ़ा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी ने कुछ ऐसा गलत मैसेज दे दिया तो तुरंत पुलिस उनके घर पे जाके पकड़ के आ गए। ऐसा नहीं समझे कि भाई कोई हम कहीं से भी कुछ भी भेज दे तो हम फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को जैसे कहते हैं कि भाई मेरी बदलने से दुनिया बदलेगी, स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो चीज आपको अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ भी आप देखते हैं, आप जरूर इसको आगे भेजिए और इन साधनों का उपयोग जरूर कीजिए। आप नहीं करेंगे, आप युवा नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे क्या होगा, क्योंकि आपके ही मार्गदर्शन से जो आगे की जो भारत की सोने की चिड़िया या अच्छे दिन आने वाले हैं, इन सब के लिए आप लोग ही निमित्त हैं। तो इसीलिए इसको खूब यूज कीजिए, परंतु पहले अपने ऊपर, उसके बाद फिर दूसरों के लिए। एक और ध्यान जरूर रखिए, हमारे में कहा जाता है कि आदमी एक कैसा है, तो कहते हैं कि इनके साथ कौन उठते बैठते हैं बताइए, तो फिर हम आपको बता देंगे वो आदमी कैसा है। तो इसी तरह से ये भी एक संगठन, संगठित रूप से चल रहा है, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया एक गांव है करके, तो गांव भी बहुत दूर पड़ता है, पर ये एक सेकंड में पहुंच जाती है कहीं भी, तो उससे भी नजदीक हो गया है ये। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान जरूर रखना है कि ये जितना फास्ट है उतना हम लोगों को संगठित रूप से जब करने में कैसे लोगों को इसमें जुड़ाना, क्योंकि उसमें ये फैसिलिटी है कि भाई आप जिसको नहीं चाहिए उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और आपके जानकारी के बिना कई लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि गलत लोग हमारे संगठन में नहीं है, तो फिर आप देखेंगे आप जो भी कुछ करेंगे वो सक्सेस होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो ये कार्य चला रहे हैं, तो ये इसीलिए सक्सेस है क्योंकि हम सब ऐसी बहनों के साथ हैं जो हमारा भला ही सोचते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इस देश के आज की युवा नेता हैं, जो इस देश का सारा फ्यूचर आपके ऊपर है, तो इसलिए इन सब साधनों को आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत कॉशियसली इसको यूज करेंगे, ऐसे निवेदन आप सबसे करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
थैंक यू करुणा भाई जी, आपने एक बहुत अच्छा डायरेक्शन हमें दिया है कि हम खुले दिल से सभी साधनों का उपयोग करें, लेकिन कहाँ उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में सतत हम इस पर हमारा नियंत्रण भी रखें और चेकिंग भी रखें। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है माननीय राजीव गुप्ता जी, आज कई कार्यक्रमों को उन्हें और भी संपन्न करना है, जस्टिफाई करना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी हम सबके बीच से आप छुट्टी ले रहे हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि विश्वविद्यालय की सिस्टम के अनुसार आदरणीय भ्राता राजीव जी को प्रसाद, गिफ्ट और शॉल से सम्मानित भी किया जाए, और मैं आदरणीय चंद्रिका देवी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भ्राता राजीव जी को आप शॉल पहना करके सम्मानित करें। और हमारे माननीय अतिथि जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि इस भूमि को आप अपना ही घर समझ करके आज जिस तरह जितना प्यार से आए हैं उसी तरह बार बार हम सबके बीच आए और बार बार हमें आपकी सेवा का मौका दें। थैंक्स अ लॉट। आप सब थक तो नहीं गए हैं ना? आई एम श्योर आप थके नहीं है ना ये सुन करके। आपको कुछ कहना है? हमें समझती हूँ इस बात से आप सभी सहमत हैं कि आज का मीडिया पिछली पीढ़ी से हम आप सभी बहुत ज्यादा आगे हैं और आने वाली पीढ़ी हम सबसे और कई कई गुना आगे ज्यादा होगी और उन्हें हम योग्य तरीके से गाइड कर पाएं उसके लिए हमें भी इन सब चीजों के जानकार और सक्षम होना बहुत जरूरी है। जिस तरह का उपयोग आप कर पाएंगे आपकी पीढ़ी को भी उसी तरह आप मार्गदर्शन दे पाएंगे। और अब मैं एक ऐसे विशेष आत्मा को यहाँ निमंत्रण दे रही हूँ जिसका फील्ड ही टोटल ये आईटी का रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार सौरभ भाई को, जो ब्रह्मा कुमार इसके संपर्क में 2007 में चंडीगढ़ से आई और 3 वर्षों से परमानेंटली उन्होंने स्पेशल आबू में अपना जॉब छोड़कर शिफ्ट किया है। ब्रह्मा कुमारी के विश्व भर में 7,000 से अधिक सेवा केंद्र, 8,500 से अधिक सेवा केंद्र हैं और उन्हें अकाउंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ पाए। ये सॉफ्टवेयर का टोटल इनिशिएशन हमारे भ्राता सौरभ भाई ने लिया है और 3 साल से इस पर कार्यरत होकर के फिलहाल वो कनेक्ट वन नाम से सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित भी आपने किया है। इनके अन्य अनुभवों में आप मार्शल आर्ट्स में ग्रीन बेल्ट होल्डर हैं और कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम को आपने टॉप किया और आर्म्ड फोर्स की ऑल द 3 विंग्स में आपने टॉप किया। आप फर्स्ट रहे हैं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा यहाँ आने से पूर्व एमएनसी चंडीगढ़ में एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। और भी एक प्रतिभा का इनका फेदर ये है कि ब्रह्मा कुमारी इस यूथ विंग के द्वारा स्कूल्स में एक टच द लाइट नाम से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो वर्तमान समय लगभग 4,000 से अधिक स्कूल्स में कार्यान्वित है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की ओर से वीक में एक बार फैकल्टीज जाती हैं और वे मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन बच्चों को पढ़ाती हैं। उनमें से एक स्कूल में फैकल्टी के रूप में हमारे सौरभ भाई भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आज एक आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेट रिवॉल्यूशन एक क्रांति के रूप में जब उभर रहा है हमारे सामने और यूथ को डायनामिक बनाने में उसका जो रोल है, इन दोनों की बैलेंसिंग को अपने ही अनुभव से और अपने ही कार्य क्षेत्र के माध्यम से हमें और स्पष्ट करेंगे भ्राता सौरभ जी।
आज का ये टॉपिक जो है वो कहें कि यूथ के लिए बहुत बहुत ज्यादा आपके लाइफ के बीच में इनग्रेन्ड है, बहुत ज्यादा आपके मिनट मिनट सेकंड सेकंड में यूज होता है। और क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं इसलिए मैं जान सकता हूं कि इस चीज का कितना आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है कि आप इंटरनेट को कैसे, कितना, कब और क्यों यूज करें। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार पूछा गया कि देश में पॉवर्टी कैसे खत्म हो सकती है, आप क्या कहेंगे? मैं यहां पे सिर्फ स्पीच देने के लिए नहीं आया हूं, आपसे बात करने के लिए आया हूं। आप क्या कहेंगे देश में पॉवर्टी कैसे खत्म हो सकती है? एजुकेशन, राइट, बिल्कुल सही बोला। आप किसी को सिखा दीजिए, समझा दीजिए कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं यूज करते हैं, वो अपने आप अपनी पॉवर्टी को ओवरकम कर लेगा, राइट। सिमिलरली पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको इंटरनेट यूज करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। हम यहाँ पे नॉलेज शेयर करेंगे। बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो आप जानते हैं, आप समझते हैं, बहुत सी ऐसी है जो इंटरनेट के माध्यम से कभी आप तक पहुंचती ही नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब एक्सरे की मशीन बनाई गई तो बहुत से लोगों को उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बहुत एजुकेट किया गया, बहुत लोगों ने उसको यूज किया। करीब 20-25 साल के बाद लोगों को यह पता चलना शुरू हुआ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, तब जाके उसके सेफ्टी मेजर्स लेने शुरू किए, बट तब तक बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत देर हो चुकी थी। यहां पे जो यूथ ग्रुप बैठा हुआ है 25 से 40 साल तक वाला, बहुत सा यूथ जो है इंटरनेट के बैड इफेक्ट्स के इफेक्ट में आने के बाद उसको रिकूप करने की कोशिश करता है। हमारा यहां पे एफर्ट क्या होगा, आपको पहले से नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड के बारे में बता देना। इंटरनेट क्या है, बिल्कुल हल्का सा मैं धीरे से आपको बताऊंगा। 1957 में चार कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका ने लगाए, आपस में एक ही जगह पे एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह पर एक्सेस करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसको उन्होंने इंटरनेट का नाम दिया। और यह तब से फैलता हुआ, उन्होंने सिर्फ मिलिट्री पर्पजेज के लिए बनाया था, बट उसके बाद तब से फैलता हुआ यह कमर्शियल पर्पजेज एंड अदर एजुकेशनल पर्पजेज और अदर पर्पजेज के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज होना शुरू हुआ। और ये फैलता फैलता आज ये कहां तक पहुंच गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं आपके आपसे मैं शेयर करूंगा, इंटरनेट की जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज का पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पे रहता है, जिसको वर्चुअल प्रेजेंस कहते हैं, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बट दो चार उसमें से मेन आपको बताता हूं। आजकल के लोग 700 बिलियन मिनट्स पर ईयर सिर्फ एक वेबसाइट फेसबुक पर स्पेंड करते हैं। 31 बिलियन सर्चेस होती हैं गूगल पर एवरी मंथ। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी अगर हम काउंटिंग करें तो 255 मिलियन वेबसाइट्स हैं, जिसमें से 40-50% वेबसाइट्स इलिसिट कंटेंट। जो इंटरनेट है वो एक कमर्शियल मीडियम बन के रह गया है। रेडियो ने 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 38 ईयर्स लिया, टेलीविजन ने 13 ईयर लिया, इंटरनेट ने कितना लिया, 4 ईयर्स, और फेसबुक ने 2 ईयर्स। जब मैं यहां आया सुबह तो मैंने टॉपिक देखा, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका टॉपिक है यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, जिसका आंसर हम इसका डिस्कशन इस प्रेजेंटेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। सक्सेस के लिए आपकी सबसे जरूरी एसेट क्या है, कोई बताएंगे? नॉलेज और कंट्रोल, हेल्थ, डिटर्मिनेशन जी, टाइम इम्पोर्टेंस, ठीक है, सॉरी, हार्डवर्क, ओके, वेरी गुड। इन सब के पीछे क्या है, आप ये सब कुछ कर पाए ये कैसे होता है? किसी ने बोला कंट्रोल, कंट्रोल कैसे आता है? आज मैं बीइंग ए टेक्नीशियन आपको आपके अंदर लेके जाऊंगा, आपके अंदर क्या हो रहा है। जैसे बताया गया ना आपको, बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई कि आपके बाहरी दुनिया में इंटरनेट के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम थोड़ा अंदर जाएंगे। इंटरनेट यूज करने से हमारे अंदर कौन से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं आप सबको मालूम है, बट गहराई से उनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ ऐसा लूज कर जाते हैं जिसका हमको मालूम भी नहीं पड़ता, और जब खत्म हो जाता है तब हमारे सामने वो चीज आती है। आज का 21 ईयर ओल्ड, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे हुए थे जिनके बारे में मैं फटाफट आपको बताऊंगा जल्दी से। इंटरनेट यूजेज की वेरियस कैटेगरीज है, जहां पे
87% लोग ईमेल्स के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए 67%, 61% चैट के लिए एंड अदर फैसिलिटीज के लिए यूज करते हैं। ये एक इसका मोटा मोटा रूप है इंटरनेट को यूज कैसे किया जाता है। बेसिक अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो दो प्रकार के यूजर इस इंटरनेट के ऊपर होते हैं। एक वो जो सीरियस पर्पजेज के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, दूसरे वो जो पास टाइम के लिए इंटरनेट यूज करते हैं या अदर नॉन सीरियस एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट यूज करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट में देखिए, जो कमर्शियल वेबसाइट्स बनती हैं, जो नॉन कमर्शियल वेबसाइट्स बनती हैं, उनका बेसिक टीआरपी क्या होता है, कैसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, व्हाट इज देयर फर्स्ट पर्पस, टू कीप द यूजर ऑनलाइन, ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पर्सन हमारे साथ हमारी वेबसाइट पे स्पेंड करे। जैसे टीवी पे टीआरपी होता है ना, ऐसे इंटरनेट के ऊपर क्लिक्स पर टाइम कितना टाइम आपके ऊपर वहां पर है। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट में जो बेसिक चीज वो स्पेंड करते हैं वो ये है कि उस कैटेगरी के यूजर को इस कैटेगरी के यूजर में लाना आपकी इंटेंशन नहीं है। जैसे हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, आप अच्छे पर्पजेज के लिए जा रहे हैं वेबसाइट में, वेबसाइट के इतने से सेक्शन के अंदर, सबने देखी ना वेबसाइट, कोई यहां पे ऐसा है जिसने इंटरनेट पे काम नहीं किया हो कभी? गुड, आप वेबसाइट्स देखेंगे उनका डिजाइन कैसा होता है, यू शेप, बीच में कंटेंट है थोड़ा सा, साइड्स पे क्या आता है और क्यों आता है, देखिए दे आर साइकोलॉजिकल, दे एनालाइज योर साइकोलॉजी, दे कीप द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट बट ऑल्सो कीप ऑन बॉम्बार्डिंग विद द इंफॉर्मेशन व्हिच यू डोंट वांट बट व्हिच ल्योर्स यू। चलो देखते हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है। That is where the real danger is. That is where the problem starts. हम ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर एक नजर मारेंगे कि इंटरनेट हमारे लाइफ में क्या क्या एस्पेक्ट को टच करता है। जैसा कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं डालूंगा, हमारे बहुत सी एक्टिविटीज में इंटरनेट हमारा टाइम सेव करता है। रेलवे बुकिंग, एयर बुकिंग, हमारे डेली रूटीन में बहुत सी चीजें जो हम इंटरनेट पे करते हैं, बहुत सा टाइम वेस्ट भी करता है। जैसे मैंने आपको भी बोला, बहुत सी चीजें आपके सामने ऐसे परोसी जाती हैं जो आपके काम के नहीं होती हैं, बट इंटरनेट में टेक्नोलॉजी के अंदर साउंड्स, लाइट्स, एनिमेशन, वीडियोस यूज करके टूल्स यूज किए जाते हैं जिससे वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करें। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं।
Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Yes! Class is over! Let me see, who visited my page today? Wow! Lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game?
Yeah, of course.
Dude, dinner's ready. I'm not hungry.
Oh, I call quits.
Why? We're so close to a level up.
Okay, Bandori.
Dude, I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah, yeah.
Hey, we're late for class.
Ah, it's only one day. What harm can it do?
Oh, I'll get in trouble for this. Ah, whatever.
एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने करुणा भाई साहब ने कही, एडिटर। पहले बहुत सारा एडिटर्स होता था, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन होता था, पेरेंट्स बहुत ज्यादा गाइड करते थे, बट आजकल के जमाने में अनसेंसर्ड इंटरनेट एंड हमारा बचपन, हमारी यूथ अनसेंसर्ड इंटरनेट के ऊपर है। अगर हमें से कोई पेरेंट्स हो तो आप सोचिए, आपका बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है तो आपके मन में क्या आता है, खुद से सोचिए। सेकेंडली, इंटरनेट का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट इंटरनेट के ऊपर आपको कस्टमाइजेशन मिलता है। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल वर्ल्ड, अपने तरीके का अपने तरीके कलर लगाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे, वीडियोस लगाएंगे, अपने तरीके की कस्टमाइजेशन देंगे। इंटरनेट आपको ट्रेन करता है चीजों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने और वर्चुअलाइज करने के लिए। बट आजकल की दुनिया, जो लोग इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप खुद अपने अंदर भी थोड़ा सा जांच के देखिएगा, उनके अंदर टेंडेंसी क्या आती है। दे वॉन्ट टू गो इन टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल। दुनिया में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके आसपास में कोई, तो उनके अंदर एक एस्केपिज्म आ जाता है। दे ऑलवेज थिंक के इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड इज एन बेटर एस्केप देन द प्रेजेंट वर्ल्ड। इसलिए आजकल बहुत सा ये देखा गया कि यूथ फेस कर नहीं पाती प्रॉब्लम्स को, इसलिए उनके अंदर सुसाइड टेंडेंसी, आपस में बुलिज्म, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार न रखना, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप न रखना, क्योंकि इंटरनेट उनको क्या सिखा रहा है, यू हैव ए बेटर ऑप्शन, यू हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर, आप वहां जा सकते हैं, तो इसलिए वो भागते हैं उस तरफ। नेक्स्ट, हम बहुत से लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं, हमारे ललित भाई जी ने एक्सप्लेन किया, बट जो हमारे साथ लोग रहते हैं, लगातार हम सेलफोन के ऊपर लगे हैं, क्योंकि दीज थिंग्स आर डिजाइंड इन दिस वे के आपका अटेंशन इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, हम लास्ट के पार्ट के अंदर डिटेल में समझेंगे। उनके साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो इस कारण से बहुत खराब होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। इंटरनेट के ऊपर बेस्ट मेडिकल आर्टिकल्स, एडवाइसेस, डॉक्टर्स, कॉर्नर्स, ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है, बट उसके साथ इंटरनेट से रिलेटेड भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बॉडी में क्रिएट होती हैं। बैक प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स हैं, बुकिंग होती है टिकट्स की, ये सब चीजें होती हैं, बट साथ साथ फॉर्जरीज, इन्फॉर्मेशन लीक, हैकिंग, ये सब चीजें भी इंटरनेट पे होती रहती हैं। तो पॉजिटिव्स हैं तो साथ साथ नेगेटिव्स भी हैं, इक्वल एंड अपने। लास्ट चीज जो हमारे को बताएगी, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन हर तरीके की मिल जाती है, बट उसके साथ साथ आप एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिएगा, थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए। मान लीजिए आपके पास 20 बुक्स पढ़ी हैं और आपको 15 मिनट में पढ़नी है, आप क्या करेंगे? इंटरनेट के लिए क्या बोला जाता है, हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, वर्ड क्या बोलते हैं, सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब समझते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है, जरूरत से ज्यादा आती है, इसलिए हमारी जो नॉलेज की डेप्थ है, हमारी जो रीडिंग टेंडेंसी है, हम इन चीजों को गहराई में जाके समझ सके, वो हमारे माइंड में कभी भी ऐसा टाइम आता ही नहीं है कि हम किसी भी चीज को इनडेप्थ पढ़। आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए। इंटरनेट पर कभी भी एक एवरेज बात बताता हूं आपको, आजकल स्कूल और कॉलेज में 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं। क्यों? पिछले 30 साल से होते थे। वो इसलिए होते थे कि उस टाइम पे एनालिसिस किया गया कि एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन है वो 45 मिनट से ज्यादा एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं रुक सकता है। एक सब्जेक्ट 45 मिनट के अराउंड ही पढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। बट आजकल जो मॉडर्न मेथडोलॉजीज के थ्रू जो इंडियन जो ह्यूमन माइंड है उसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि जो आजकल रिसर्चेज हुई है, तो एवरेज अटेंशन स्पैन कितना बन गया है, आप सोचिए, गैस लगाइए कितना हुआ होगा। बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 8 मिनट। 8 मिनट से ज्यादा कोई एवरेज टीन जो है वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनालाइज कीजिएगा, हम उसका क्वेश्चन ढूंढेंगे। इसीलिए यूथ क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें डालने की कोशिश करती है, मल्टीटास्किंग, खाना भी खा रहे हैं, फोन भी सुन रहे हैं, ईमेल भी चेक कर रहे हैं, कुछ और स्टडीज भी साथ में पड़ी हुई है। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच दे वॉन्ट टू डू एंड देर इज सो लिटिल टाइम, वेराइटी के अंदर चॉइस नहीं है। सेकेंडली, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस में इंफॉर्मेशन है, इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट इज अबाउट ओपिनियन, कोई भी उठा के कुछ भी वेबसाइट्स बना सकता है। आपके पेज के ऊपर 50,000 लोग आ गए, गूगल के ऊपर सर्च इंजन में सबसे ऊपर वो चीज आ गई, यू आर द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, यू कैन राइट एनीथिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? वेरी गुड, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, देखिए क्या होता है। यस राइट, फाइंड आउट होता क्या है वहां पे? इंडियंस को इंडियन हिस्ट्री भुलाने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आप किसी भी आज छोटे बच्चे से जाके पूछे साइंस कौन से देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई, किस देश ने सबसे ज्यादा, अच्छा ये टेक्नोलॉजी कहां सबसे ज्यादा ग्रो हुई, आपको क्या लगता है ये इंटरनेट आज ही चालू हुआ है? 1957 के लिए कहा जाता फिजिकल इंटरनेट चालू हुआ है, बट एक्चुअली इंटरनेट कब से चालू हुआ था? सर्जरीज होना कब से शुरू हुई थी? 2000 में सर्जरीज होना शुरू हुआ था। आपने अर्थवेद, हमारे जो वेद हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ऋषि मुनि हैं उस स्किन उतार के, एक्स्ट्रा जगह से स्किन उतार के सर्जरीज करते थे। डिफरेंस क्या है उस काल में और आज के काल में? सॉरी, ओके, नो, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी दो चीजें। व्हेन टेक्नोलॉजी गवर्न स्पिरिचुअलिटी जो आजकल के टाइम में है, देन टेक्नोलॉजी इज आउट ऑफ हैंड्स। व्हेन स्पिरिचुअलिटी गवर्न्स टेक्नोलॉजी, चार आश्रम थे, युवा, गृहस्थ, जानते हैं ना, द सोसाइटी वॉज गवर्न्ड बाय द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इसलिए कभी उन चीजों का मिसयूज नहीं हुआ। हमारे जो ब्रह्म कुमारीज में ज्ञान दिया जाता है उसके लिए बताया जाता है कि सत्युग के अंदर द अल्ट्रा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है बट कभी फेल नहीं होती है। जैसा हमारे भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया, वाइब्रेशन से प्लेन्स चलते हैं, राइट उस काल में क्या है, स्पिरिचुअलिटी इज गवर्निंग टेक्नोलॉजी, दैट इज वाई दे आर एबल टू चूज हाउ मच, वेन, वाई, वेयर। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके बारे में कि हमारे सामने कितना इन्फॉर्मेशन लोड होता है।
You have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia.
कितना आपके सामने इन्फॉर्मेशन, कितना तेजी से आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में एग्जाम्पल दिया।
This is what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us.
मैंने देखा है हमारे फायरफॉक्स का ब्राउजर खुला होगा, हम सर्फिंग करते होंगे, मेरे साथ वाले भाई बहन है उनके साथ जाऊंगा, 200 टैब्स। क्या है, मैं हम सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप दो घंटा बैठते हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग फ्रॉम वन लिंक टू अदर, अनदर लिंक टू अनदर, कभी भी हम इन डेप्थ में नहीं जा पाते क्योंकि इंटरनेट इज डिजाइंड दैट वे, अवेलेबल एवरीवेयर एंड एनीवेयर, सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है। इसका डाउन साइड क्या होता है, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, कोई भी प्रोफेशनल है उनसे, बीवी से, बच्चों से, घर से पूछिए, हमेशा उनके पास किसी ना किसी चीज पे वो कनेक्टेड होते हैं। कंपनीज वाले इस चीज को हाईलाइट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वी गिव 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, व्हाट इज दैट, हमारे लाइफ का 24 आवर्स वो अपने पास रख लेते हैं। क्या हमको अपने लिए टाइम मिलता है? दीज आर कंपल्सिव इंटेलिजेंसेस। हम कहते हैं 24 आवर्स हम ऑनलाइन है, हम 24 आवर्स बाकी की दुनिया से ऑफलाइन है। हमारे सामने क्या हो रहा है हमको नहीं पता, इंटरनेट पे क्या हो रहा है हमको सब कुछ मालूम। इसके इफेक्ट्स अभी जो बेसिक पार्ट है जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है, आपके स्पिरिचुअली एंड मेंटली आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं इंटरनेट को लॉन्ग टर्म यूज करने का।
Still have the same brains. And also, there's the internet, which is...
It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, text. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption.
Which is dangerous because...
That mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking.
And that book.
See, hum nayi cheezon ki taraf attract hote hain. This is our psychological, jisko kahe kamzori kahe. Aur internet isko consume karta hai. Isliye हर नई चीज हमको मार्केटिंग करके ऐसे दी जाती है और हम जो उनको उनके अंदर इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो एक हमारे लिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, हमारे माइंड को रेगुलरली पुल करती है। आप अपने आप से पूछिए, हर 5 मिनट बाद आपके मन में थॉट आता है कि नहीं, कुछ SMS तो नहीं आया, कोई ईमेल तो नहीं आया, किसी ने पिंग तो नहीं किया, कोई भी आवाज होगी, शायद व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया होगा। कंपल्सिवली आपको हर थोड़े थोड़े मिनट के बाद, व्हाट डू यू लूज इन दैट प्रोसेस, दैट वी विल डिस्कस, व्हाट डू यू लूज इन दैट प्रोसेस। हमको नहीं मालूम पड़ता हम क्या लूज कर रहे हैं। वही क्वेश्चन याद रखिएगा, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कॉन्टिन्यूस वर्किंग ऑन इंटरनेट एंड अदर गैजेट्स डिक्रीजेज अवर अटेंशन स्पैन, जैसे कि मैंने अभी पूछा, अटेंशन स्पैन डिक्रीज होने से क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, लेट अस सी।
कॉम थिंकिंग इज एक्चुअली हाउ वी लर्न।
आपकी मेमोरी कैसे बनती है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है?
एंड दैट मींस द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। And it's through moving information from your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know.
So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything. All because of one distraction.
So attention is the key, and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process.
But I can hear it now. Someone out there is.
हमारे memory कैसे build होती है? Memory के 3 principles हैं: revision, revisiting, and image. आप कभी किसी चीज के ऊपर टाइम डालते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, थोड़ा टाइम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटेंशन देते हैं, तब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उससे निकल के आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड देन वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। क्यों आजकल बच्चों को भी यूथ को भी आप भूलने की बीमारी? आप में से ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल भूलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमेशा याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। जैसे हमारे फोर फादर्स का सोचिए, आप लोग खुद ही सुनाते हैं, क्यों हमारे मेमोरीज इतना डाउन हुए? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली देर इज अ पिंग 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 पिंग, कुछ हुआ इधर, कुछ हुआ उधर, कुछ हुआ, एंड वी आर नेवर कंसंट्रेटेड ऑन द थिंग विच इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस। मेमोरी कम होने से क्या होता है?
Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well,
That is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're simply, you're kind of thinking like a computer.
Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat.
पहले के जमाने में किसी को कुछ बनाना होता था। They created it. साइलेंस में बैठेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, वो चीज पहले उनके मस्तिष्क में क्रिएट होती थी। दैट वॉज देयर क्रिएटिविटी एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। आजकल क्या होता है, आपको कुछ भी कोई आर्टिकल लिखना है, कोई आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज, पहली चीज क्या आ जाती है? ऑनेस्टली प्लीज, पहली चीज क्या आ जाती है? गूगल, राइट? This is what is happening to us. We are becoming robots. जब आप लंबे टाइम तक मेमोराइजेशन करते हैं, किसी चीज पर टेंशन देते हैं, तब जाके वो आपके लिए नॉलेज बनता है। बट आजकल जो चीज है, आपको फोन चाहिए, नंबर चाहिए, मोबाइल में पड़ा है, मुझे याद रखने की जरूरत क्या है? हमारे भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बोली, दैट रिड्यूसेस योर इंटरनल पावर टू मेमोराइज। यू आर लर्निंग using the mobile, you are learning using the internet, but आप lose क्या कर रहे हैं? आपसे आपका mobile लिया जा सकता है, आपसे आपका internet लिया जा सकता है, बिजली खत्म हो जाए कुछ भी नहीं चलेगा, पर क्या चलेगा? So what we are losing and what we are gaining in this process, this knowledge is very important. थोड़ा सा आप analyze कीजिए, हम क्या gain कर रहे हैं, क्या lose कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, we just serve things. एक डर है आजकल की यूथ के अंदर, outdated.
I really believe that if you look at the great monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, think conceptually, think critically, think in some very creative ways.
And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong, the internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Your email and those cats.
आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था वो बच्चा कहता है क्या फर्क पड़ता है सी वी डोंट नो. आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है. हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे अल गौर, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सुनाया करते थे, आप एक फ्रॉग लीजिए, उसको उबलते पानी में डाल दीजिए, वो साथ के साथ बाहर आ जाएगा. वाई? क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि पानी गर्म है. आप उसी फ्रॉग को पानी में डालिए, नीचे गैस चला दीजिए, उसको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कब गर्म हो गया और वह कब मर गया. वाई? दिस इज अवर लिमिटेशन. वी आर नॉट एबल टू रीड स्लो चेंजेस, स्लो डिग्रेडेशन. एंड वट इज ऑल दिस गैजेटरी डूइंग टू अस? स्लो. अच्छा, कोई एक पर्सन हाथ उठाए जो ये कह सकता है कि मैंने टेक्नोलॉजी जब से यूज करना शुरू किया मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा है, मेरी मेमोरी बढ़ी है, मेरी सोचने की शक्ति बढ़ी है, मेरी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, मैं लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया है, असली एंजॉय, डिपेंडेंसी वाला एंजॉय नहीं. हमारे को ये गैजेट्स क्या सिखाते हैं? अगर मुझे शांति में बैठना है ना, तो मुझे फलानी वेबसाइट पर जाके वो वाला सॉन्ग सुनना है, फिर मुझे शांति मिलेगी. अगर मुझे खुश होना ना, तो मुझे फलानी वेबसाइट पर जाके वो वाली मूवी या वो वाला क्लिप देखना है. We have forgotten our inner original capacity to create happiness, to create peace. Is peace lying on website or within me? This is the basic thing that we forget out of it. So, what is the most important thing for success? Anybody? Ji? Okay. यस, उसका भी थोड़ा आगे जाते हैं हम. अभी हम इस फिजिकल बॉडी के अंदर गए हैं, अभी हम इससे भी थोड़ा अंदर जाएंगे, इससे भी थोड़ा और हम टेक्निकली देखते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है. लेट अस एनालाइज अ लिटिल बिट बिफोर गोइंग इन. व्हाट आर वी गेनिंग और व्हाट आर वी लूजिंग? हम बहुत पावरफुल मशीन्स बना रहे हैं, बट क्या हम खुद पावरफुल बन रहे हैं? हम दुनिया से बहुत पास आ रहे हैं, बट क्या हम अपने साथ अपने खुद के पास आ रहे हैं या अपने से दूर होते जा रहे हैं? हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को बहुत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे सब कुछ, फायर्स ये वो. क्या हमारे अंदर के विचार ऑर्गेनाइज हैं? क्या हमारे अंदर की शक्तियां ऑर्गेनाइज हैं? पहले कहा जाता था कि एक साधु पूरे विश्व से बात कर सकता है. आज मुझे साथ बैठे हुए आदमी के साथ बात करने के लिए व्हाट्सएप चाहिए. मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रोबोट्स, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है. कोई एक हाथ उठाए जो कह सकता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं? सी, दैट इज व्हाट वी आर लूजिंग ग्रेजुअली. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी फास्ट, बहुत तेज भाग रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है. कहां जाना है? कोई बता सकता है कहां जाना है? These are the things we need to analyze. Where are we going? मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप ये कीजिए या ये नहीं कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, आप बहुत समझदार हैं. स्पिरिचुअल रेस्पेक्ट के ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा. इस ब्रेन के अंदर भी क्या होता है? वेयर डू वी लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? हम आत्मा है, ये आपने सुना होगा. यहां पर आपने जो कोर्स किया और आप सब आए हैं, सभी ने सुना, सभी को मालूम है हम क्या है. डू वी नो अवर इंटरनल आइडेंटिटी? यस और नो? यस और नो? ओके, तो मैं आगे बढ़ू ना. ओके, देयर आर थ्री फैकल्टीज ऑफ सोल. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत काम की चीज है ये. देयर आर थ्री फैकल्टीज ऑफ सोल, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व और संस्कार. आप एक विचार क्रिएट करते हैं. विचार कैसे आता है? आसपास की चीजों से, आसपास के. वो फैकल्टी जो विचार क्रिएट करती है उसे मन कहा जाता है. उस विचार के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो फैकल्टी है, जो उस पर निर्णय लेती है कि ये करना है नहीं करना है, अच्छा है बुरा है, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। और जब आप उस पर डिसीजन ले लेते हैं और वो आपका संस्कार बन जाता है, आपके अंदर वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है, उस रिकॉर्ड को संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप सोच करते हैं तो आपको सिर्फ एक सोच नहीं आती है कि ये कर सकते हैं या नहीं करते, साथ में ये भी सोच आती है कि मैंने पहले भी किया था। सो यू आर मोर कंपल्सिव इन टू इट। अगर आपने एक बार भी सिगरेट नहीं पिया, आपके सामने सिगरेट रखी जाए आप नहीं पिएंगे, बट अगर आप रोज की 10 सिगरेट पीते हैं, आपके सामने सिगरेट रखी जाए, माइंड क्या करेगा? माइंड क्या करेगा? इंटेलेक्ट को बाईपास करेगा, बिकॉज इंटेलेक्ट हैज ग्रोन सो वीक, इंटेलेक्ट हैज ग्रोन सो वीक के वो जवाब नहीं दे पाती संस्कार और माइंड को। दिस इज योर थॉट क्रिएटिंग प्रोसेस। मन पर बुद्धि का कंट्रोल है, उसके द्वारा डिसीजन होने से एक्शंस होते हैं। बट जैसे ये प्रोसेस चलता जाता है और आपका इंटेलेक्ट वीक होता जाता है, वैसे वैसे इंटेलेक्ट को बाईपास करना शुरू कर देते हैं। आप इंटरनेट पे बैठे, आप बहुत सोचते हैं मैंने आज 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है। जैसे ही बैठते हैं क्या होता है? कुछ अच्छी चीज दिखी बट मुझे आज कुछ दूसरा कुछ करना है, तो क्या होता है? बिकॉज इंटेलेक्ट हैज ग्रोन वेरी वेरी वीक। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हेल्दी इंटेलेक्ट। अगर आपके बुद्धि में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो माइंड को और संस्कारों को कंट्रोल करके दिशा दे सके, आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो दिशा दे सके, जितना मर्जी यूज कीजिए। हमारे भाई साहब ने बोला ना, यूज कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? What is the solution? How to make your intellect better? कितना करना है, क्या करना है, उसका एक analysis कीजिए आप। Crowd को follow नहीं कीजिए। आजकल के youth में एक डर है, मैं आपसे पहले भी बात करने लगा, what is that? Outdatedness। मुझे इच्छा नहीं है, but जब हम 4 लोगों में बैठते हैं, I am a software developer, 8 लोगों की टीम के साथ काम करता हूं, मेरे साथ वाले आगे कभी बोलते हैं भैया व्हाट्सएप पे ही आया था, मैं क्या बोलता हूं? व्हाट्सएप ये क्या होता है? बट यूथ के अंदर क्या प्रॉब्लम है? दिस इज देयर आइडेंटिटी। इफ आई एम एट पार विद टाइम, आई हैव टू बी अपडेटेड, और इसके कारण भी हम बहुत सारी चीजों में जाते हैं। नो, लिमिट कीजिए अपने आप को, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होइए। इंटरनेट इज वन ऑफ द टूल्स, नॉट द ओनली टूल्स। इंटरनेट नहीं था तब भी हम बहुत कुछ करते थे, ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढिए। हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी इनर पीस, स्टेबिलिटी और आपकी कंसंट्रेशन को, बिकॉज दैट इज द ओनली टूल दैट विल वर्क फॉर यू ऑलवेज। एंड लास्टली मेडिटेशन। अगर आप अपने रूटीन में रोज सुबह आधा से 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं? वी एम्पावर द इंटेलेक्ट बाय यूजिंग, मेडिटेशन के अंदर हम बुद्धि द्वारा अपने विचारों का प्रोडक्शन करते हैं। इससे हमारी बुद्धि जो है मन और संस्कारों पर कंट्रोल करना सीखती है। और सुबह का टाइम जो होता है वो ज्यादा सात्विक होता है, इसलिए इंटेलेक्ट का जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा होती है। सेकेंडली, आप नॉर्मली इंटरनेट पे कब जाते हैं? आजकल ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, जिसको कहते हैं एम्प्टीनेस, अंदर खाली ना, क्या करें, कुछ नहीं है, क्या करना है? बिकॉज आत्मा अपनी जो 7 शक्तियां हैं, ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इनको भूल गई है, इसलिए अंदर एम्प्टीनेस है। मेडिटेशन से जैसे जैसे ये एम्प्टीनेस भरता जाता है, आपको इच्छा नहीं होती है दूसरी चीजों की तरफ जाने की। अगर आपके अंदर ये 7 चीजें नहीं है, अगर आप एम्प्टी हैं, आप गलत चीजों की तरफ जाएंगे ही। कर लीजिए कंट्रोल, कर सकते हैं तो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप खाली घड़े को बजाएंगे, आवाज आएगी ही आएगी, बट वेन इट इज फुल, इंटरनेट आपने मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर सुख, शांति, आनंद का अनुभव किया है, तो उसी सुख का अनुभव आप किसी वेबसाइट में करने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपका पेट भरा होगा, आपका मन भरा होगा, आपको कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं गलत जगह जाऊं। कुछ सामने आएगा भी तो बंद करके सही जगह पे चले जाएंगे। कितना करना है, क्या करना है, आपको मालूम पड़ेगा। प्यास लगती है तो मालूम पड़ता है ना। एंड लास्टली, बी द चेंज।
लॉट्स ऑफ थैंक्स सौरभ भाई। आशा करती हूँ आप सबने इस सेशन को, इस प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत एंजॉय किया है। तो एक बार अच्छी तरह से क्लैप कर दीजिए। थैंक यू। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे रही हूं, हम केवल 3 मिनट। एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठते हैं कि जो भी साधन हम सबको उपलब्ध हैं और हमारे पास है, उसका हम बहुत अच्छी तरह यूज करेंगे, सकारात्मक यूज करेंगे और इस तरह से उसे यूज करेंगे ताकि केवल हमें ही नहीं, उससे अन्य हमारे दोस्तों को भी फायदा हो सके, उनके जीवन में हम कोई पॉजिटिव चीज को डाल सके। अगर ये मीडिया, सोशल मीडिया या हम जो भी इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्ट स्प्रेड कर सकती है, तो इतना ही तेज गति से वो अच्छी चीजों को भी स्प्रेड कर सकती है। तो क्यों नहीं आज हम सब मिलकर के अपने आप को बहुत दृढ़ता से ये पक्का करा दे कि कोई भी नकारात्मक चीज हम आज के बाद ना देखेंगे, ना करेंगे, ना उसे स्प्रेड करेंगे। कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जो हमारे बिल्कुल काम की चीजें नहीं है, ऐसी वेबसाइट से हम अपने को बचाए रखें। मैं बहुत बरसों तक कॉलेज के यूथ से जुड़ी हुई रही हूं और मैंने ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स के लाइफ के इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें ऐसी वेबसाइट्स को देखने के बाद उन्हों की बुद्धि में इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि हमने कुछ गलत काम कर लिया है। और ये जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो महीनों तक उसमें से वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनको काउंसलिंग्स कराना पड़ता है, उनको स्पेशल सेशंस देना पड़ता है और उनको ये फ्रस्ट्रेशंस में से बाहर लाना पड़ता है। ये सब चीजों से हम विदित हैं, इसीलिए आज हम बहुत कम समय, सिर्फ 3 मिनट यहाँ बैठेंगे और अपने मन में एक बहुत सुंदर विजन को बनाएंगे कि आज से हम क्या क्या देखेंगे और इस इंटरनेट का उपयोग आज से मैं पर्सनली क्या करूंगा या करूंगी। हम 3 मिनट एकदम साइलेंस में और इसी विजन को सामने रखकर बैठते हैं और ये दृढ़ संकल्प के साथ उठेंगे कि मेरा टोटल यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया वुड बी वेरी मच पॉजिटिव। थैंक यू।
जाए बदल खुद को हम बदले इतना।